ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। दसवाध्याय श्री भगवान का ऐश्वर्य, श्लोकों का पाठ हम लोग सब साथ में करेंगे। आदित्यानाम अहम विष्णु ज्योतिषाम रविरंशुमान मरीचि मरुताम अस्मि नक्षत्राणाम अहम शशि। मैं आदित्यों में विष्णु, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य, मरुतों में मरीचि तथा नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्ण। कृपया अनुवाद दोहराइए। अर्जुन ने भगवान से पूछा था कि मैं किस तरह आपको जान सकता हूँ, किन किन रूपों में आपको देख सकता हूँ। ये प्रश्न कथम विद्याम अहम योगी स्वाम सदा परिचिन्तयन्, कैसे मैं आपको बार बार हर अलग अलग रूपों में मैं देख सकता हूँ, ये प्रश्न अर्जुन ने किया। और उस प्रश्न के उत्तर में भगवान ने उनको ये ज्ञान देना शुरू किया। पहले भगवान ने बताया, अहम आत्मा गुड़ाकेश, हे गुड़ाकेश, हे अर्जुन, मैं सभी जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हूँ। अहम आदिश्च मध्यम च, और मैं ही सबका आदि हूँ, सबका मध्य हूँ और सबका अंत एव च, मैं ही अंत हूँ। और अब भगवान बता रहे हैं कि किस तरह से भगवान को हम लोग देख सकते हैं। इन सारे श्लोकों में, आगे आने वाले श्लोकों में, भगवान ये बताएंगे कि जो भी चीज़ हम देखते हैं उसमें जो सबसे अच्छी चीज़ है या सबसे उत्तम उस श्रेणी की चीज़ है या उस श्रेणी का व्यक्ति है, वो भगवान का प्रतिनिधि है या उसको भगवान के रूप में देखना चाहिए। यहाँ पर भगवान पहला इस श्रेणी के जो पहले श्लोक में चर्चा शुरू कर रहे हैं, आदित्यानाम अहम विष्णु, आदित्यों में मैं विष्णु हूँ। श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि 12 आदित्य होते हैं। हमने पिछली बार आप लोगों से कहा था कितने लोग ये नाम लिखकर लाए हैं 12 आदित्यों के। 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरफ कोई नहीं है लास्ट में। तो कई लोगों को ऐसा होता है कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं ज़्यादा मेहनत नहीं करते हैं, लेकिन भक्ति में अगर मेहनत नहीं की तो वो बुद्धिमानी नहीं कहलाती है। क्योंकि भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत, इसमें क्या अंतर है? भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत के विपरीत है, उल्टा है। तो भौतिक जगत में ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति ज़्यादा मेहनत किए बिना अपना काम चला लेता है वो बहुत बुद्धिमान है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में जो मेहनत करता है, जो प्रयास करता है, सेवा भाव रखता है, वो प्रगति करता है। तो 12 आदित्य बताए गए हैं श्रीमद् भागवतम के 6 स्कंद में, उनका वर्णन आता है। आदित्यों का अर्थ है अदिति के पुत्र, कश्यप और अदिति। कश्यप मुनि ये मरीचि जो कि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, उनके पुत्र हैं कश्यप मुनि। कश्यप मुनि ये बहुत ही श्रेष्ठ ब्राह्मणों में से एक हैं, मुनि हैं और साथ ही साथ प्रजापति भी हैं, अर्थात प्रजनन क्रिया का भार सृष्टि के समय उनके ऊपर है। कश्यप मुनि ने दक्ष प्रजापति की 13 कन्याओं से विवाह किया। वैसे देखा जाए तो कश्यप मुनि, इनकी स्थिति का अगर वर्णन किया जाए तो सप्त ऋषियों में से एक ऋषि भी कहलाए जाते हैं। 7 प्रमुख ऋषि होते हैं जिन्हें सप्त ऋषि कहते हैं। इसकी चर्चा इन इसी अध्याय के पिछले श्लोकों में हुई है। उस श्लोक पर हमने चर्चा नहीं की थी, लेकिन आप लोगों ने अवश्य उस पर विचार किया हो। तथा उनसे भी पूर्व चार अन्य महर्षि एवं सारे मनु सब मेरे से उत्पन्न हैं। तो यहाँ पर भगवान सप्तऋषियों का वर्णन करते हैं और कश्यप मुनि सप्तऋषियों में से एक हैं और ये सप्तऋषि हर मन्वंतर में अलग अलग होते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिवस में 14 मनु आते हैं और इन मनु के समय को एक मन्वंतर कहते हैं और हर एक मन्वंतर में अलग अलग सप्तऋषि होते हैं। कभी एक जैसे भी हो सकते हैं, कभी एक दो ऋषि बदल सकते हैं, ऐसे अलग अलग होते हैं। ये जो मन्वंतर चल रहा है ये 7वां मन्वंतर है और इसमें मनु कौन है? वैवस्वत मनु, वैवस्वान के पुत्र है वैवस्वत मनु। तो 7वें मनु अभी इनका समय चल रहा है और वैवस्वत मनु के मन्वंतर में या उनके समय में जो 7 ऋषि हैं उनके नाम हैं कश्यप मुनि, अत्रि मुनि, वशिष्ठ मुनि, विश्वामित्र, गौतम मुनि, जमदाग्नि और भरद्वाज। ये 7 सप्तऋषि कहलाते हैं और इनमें से प्रमुख मैंने पहले ऋषि हैं कश्यप, कश्यप मुनि। तो कश्यप मुनि इन्होंने दक्ष प्रजापति की 13 कन्याओं से विवाह किया जिनके नाम हैं अदिति, दीति, दानु, काष्ठा, अरिष्ठ, सुरसा, ईला, मुनि, क्रोधवश, ताम्र, सुरभि, शरुमा और तिनि। ये 13 कन्याएं दक्ष प्रजापति की हैं जिनसे कश्यप मुनि ने विवाह किया ताकि वो अपना कार्य कर सके। प्रजापति का कार्य है प्रजनन करना, इस कार्य के लिए उन्होंने दक्ष प्रजापति की कन्याओं से विवाह किया और आगे प्रजनन क्रिया की। तो अदिति के जो पुत्र हुए उन्हें आदित्य कहते हैं, दीति के जो पुत्र हुए उन्हें दैत्य कहते हैं। अर्थात असुर और सुर दोनों भाई भाई हैं, उनके पिता एक ही हैं। बहुत सुंदर बात है ये। इस जगत में जितने भी सुर असुर प्राणी हैं उनके पिता एक ही हैं। कौन है उनके पिता? उन्होंने भगवान कृष्ण, सारे प्राणियों के पिता भगवान कृष्ण हैं। कश्यप मुनि तो केवल दैत्यों के और आदित्यों के और अन्य जो अन्य पत्नियों से उनके पुत्र उत्पन्न हुए उनके पुत्र उनके पिता कहलाते हैं, लेकिन हम सब के पिता हैं भगवान श्री कृष्ण। तो देखिए कितना सुंदर उदाहरण है, एक ही घर में दो पत्नियां हैं, एक के पुत्र दैत्य हैं असुर हैं, जिसमें आगे चलकर भगवान उसका भी वर्णन करने वाले हैं। दैत्यायनाम हम प्रहलाद के बारे में भी वर्णन करेंगे। तो दैत्य आते हैं और अदिति के पुत्र आदित्य अर्थात जो स्वर्ग के देवता हैं सुर हैं, लेकिन दोनों एक परिवार के हैं, एक ही पिता हैं, फिर भी आपस में झगड़ते हैं, फिर भी आपस में युद्ध करते हैं। हमारे समाज में भी यही स्थिति है, हम लोग भूल चुके हैं कि हमारे पिता एक हैं, इसलिए हम लोग युद्ध करते हैं, झगड़ा करते हैं किसी जमीन के लिए, किसी धन के लिए या अन्य कारणों के लिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस बात को या सभी लोग इस बात को समझ लें कि हमारे पिता एक हैं, ये सारी संपत्ति उनकी है हमारी नहीं है, हमें तो केवल थोड़ा सा दिया है उन्होंने ताकि हम लोग इसका उपयोग कर सकें। देन त्यक्तेन भुंजिता, उन्होंने हमारे लिए छोड़ दिया है थोड़ा सा, एक हिस्सा दिया है हमें, हमें उतना ही हिस्सा इस्तेमाल करना है। इसीलिए उपनिषद में बताया गया है कि सब कुछ भगवान का है, हमारा कुछ नहीं। फिर भी तेन त्यक्तेन भुंजिता, उन्होंने हमारे लिए कुछ छोड़ दिया है, भले ही ईशावास्तव में बन चल रहा सब कुछ उनका है, फिर भी थोड़ा सा हमें दिया है। तो अगर हर कोई व्यक्ति ये समझ ले और अपने आप को संतुष्ट कर ले इस बात को जानकर कि जो कुछ भी मुझे मिला है भगवान की कृपा है, तो व्यक्ति इस समाज में बहुत से सुव्यवस्था हो सकती है, सारे युद्ध सारे झगड़े बंद हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम लोग इस एक बात आतंकवादी हो गए हैं। पहले तो नहीं था ऐसा, पहले कभी नहीं सुना था कि कोई ऐसे गट बन गए हैं कि वो अपने आप में बम लगा कर दोस्तों को उड़ा देते हैं, या ऐसे गट हैं जो किसी एक विशेष व्यक्ति का पालन करते हैं। तो ऐसे ही आतंकवाद बढ़ गया है, हिंसा को नया नया नाम दिया जा रहा है, है वही हिंसा हत्या लेकिन नए नए नाम के द्वारा। और इसका केवल एक कारण है कि हम लोग ये नहीं जानते हैं कि हमारे पिता एक ही हैं और ये सारी संपत्ति उनकी है। तो कश्यप मुनि की ये दो पत्नियाँ आदित्य और दीति, इनसे आदित्य और दैत्य हुए। यहाँ पर भगवान वर्णन कर रहे हैं आदित्यानाम अहम विष्णु, मैं आदित्यों में विष्णु हूँ। तो 12 आदित्य हैं, तो कृपया आप लोग बताइए क्योंकि आप लोग लिख कर लाए हैं, तो 12 आदित्यों का वर्णन कृपया कीजिएगा, लेकिन हमें लाइन से चाहिए नाम, पहले कौन पुत्र हैं, दूसरे कौन, तीसरे कौन, ऐसे 12 पुत्र कोई करेंगे, कोई बताएंगे वर्णन, या आप इधर तो ये आप बोले ये इलाहाबाद से काम नहीं था, आगे आना पड़ेगा आपको। हम नहीं आगे चलो हाँ है ना, अच्छे अच्छे बच्चे प्लीज आदित्य हो सकते हैं, आदित्य 12। तो आप लोगों ने सुना सबने 12 आदित्य, लेकिन ये क्रम से नहीं है। प्रभु जी ने बहुत मेहनत किया, धन्यवाद प्रभु, लेकिन फिर भी क्रम से, किसी ने क्रम से लिखे हैं, ठीक है तो आप लोग क्रम से लिखिए अभी आदित्यों के नाम। विवस्वानरिमा पुषा तष्टता सविता भग धाता विधात वरुणो मित्र शत्रु उरुक्रम, ये क्रम है आदित्यों का। विवस्वान सबसे पहले आदित्य आते हैं, विवस्वान, विवस्वान अर्यमा, दूसरे हैं अर्यमा, और तीसरे पुष, चौथे आदित्य पुष्ट। आपने लिखे हुए हैं ना, खाली लाइन नंबर क्रम आ रहा है। पहले आदित्य हैं विवस्वान, दूसरे वैसे इस तरफ भी जो लोग बैठे हैं वो कभी गलती से बुक और पेन अगर ले आएंगे तो अच्छा लगेगा, हम अगली बार से हो सके तो आप लोग अगर नहीं ला सकते तो हमें बताइएगा, हम आपको यहाँ से दे देंगे पैड, लेकिन नोट्स लिखिए, अन्यथा केवल यहाँ पर आएंगे और जाएंगे, कोई लाभ नहीं होगा, तो थोड़ा थोड़ी सी मेहनत कीजिए भगवान के लिए। तो आप लोग भी लाइए ताकि आप लोग भी इनको लिख सकें, ये महत्वपूर्ण सूचनाएँ हैं या महत्वपूर्ण निर्देश भगवत गीता के हैं, इन्हें अपने जीवन में उतारना चाहिए। तो विवस्वान अर्यमा पुष्य, ये तीन है, फिर पुष्ट है, ये चौथे हैं, सविता और भगत पांचवे और छठे, ये छह आदित्य हुए। फिर सातवे आदित्य हैं धाता, आठवे हैं विधाता, ये विधाता भगवान के लिए नहीं है, कभी कभी विधाता शब्द भगवान के लिए इस्तेमाल होता है। विधाता का अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है विधाता, भाग्य लिखने वाला, जिसने हमारा विधि लिख दिया है, विधाता विधि को लिखने वाले, लेकिन ये विधाता दूसरे हैं। सिद्धाता विधाता कितने हो गए, आठ, और वरुण ये नवे हैं, और दसवे हैं मित्र, ग्यारहवें नंबर पर हैं शत्रु, और अंतिम आदित्य हैं बारहवें नंबर पर उरुक्रमान। लेकिन भगवान यहाँ बता रहे हैं आदित्यानाम अहम विष्णु, इसमें विष्णु तो कहीं आए नहीं, विष्णु कौन है इसमें, विवस्वान, विवस्वान बहुत अच्छी बात है, इसमें एक विष्णु इसमें है। आप लोगों ने वामन देव का नाम सुना है, वामन देव कौन है? वामन देव कौन है? विष्णु है ना। और उनके माता पिता का नाम क्या है? आदित्य और कश्यप। तो उनका नाम नहीं आया इसमें, एक तेरे में उरुक्रमा, उनका नाम है उरुक्रमा, और वो वामन देव जो आदित्यों में प्रमुख हैं, इसलिए भगवान यहाँ कहते हैं आदित्यानाम अहम विष्णु। तो आदित्यों में जो प्रमुख हैं वो विष्णु हैं। भगवान वामन ने आदित्य की प्रार्थना पर, कश्यप मुनि की प्रार्थना सुनकर उनके पुत्र के रूप में जन्म लिया। जिस समय इंद्र का राज्य छिन गया था और उस समय इंद्र के लिए राज्य को वापस मांगने के लिए वामन देव ने अवतार लिया। इन्हें उरुक्रम इनका नाम इसलिए है क्योंकि इन्होंने ऐसा कार्य किया। क्या कार्य किया? ब्रह्मांड को भेज दिया था इन्होंने, शरीर इतना विशाल कर लिया था। तो वामन देव ये आदित्यानाम अहम विष्णु, इनके बारे में भगवान वर्णन कर रहे हैं क्योंकि उनको आदित्यों का ज्वल, क्या बोलते हैं उसको, मणि, आदित्यों में मणि माना जाता है वामन देव को। तो ऐसे 12 आदित्य हैं जो अदिति और कश्यप मुनि के पुत्र हैं। दरअसल सारे देवी देवता ये 3 प्रमुख भागों में विभाजित हैं जिसका वर्णन श्रीपाद मध्वाचार्य करते हैं। और ये 3 श्रेणियाँ हैं, मध्वाचार्य बताते हैं, आदित्य वसवो रुद्रा त्रिविधा ही सुरा यथः। आदित्य अर्थात आदित्य, वसव अर्थात वसु, और रुद्रा रुद्र। तो मध्वाचार्य जी लिखते हैं कि आदित्य वसव रुद्र, ये जो 3 श्रेणियाँ हैं रुद्र, त्रिविधा ही सुरा यथः। ये सुर यानी देवताओं की ये 3 श्रेणियाँ हैं, प्रमुख श्रेणियाँ, और जो बाकी श्रेणियाँ हैं वो सब गंधर्व और अन्य जितने भी हैं वो सब इनकी मरित भी, हम जो मंगलन सुन रहे हैं मरित, तो ये सब उनके उसी श्रेणी में आते हैं। लेकिन 3 प्रमुख श्रेणियाँ हैं, कौन कौन सी हैं? आदित्य, वसु और रुद्र, ये 3 प्रमुख श्रेणियाँ हैं। तो 12 आदित्य होते हैं, 8 वसु हैं और 11 रुद्र हैं, ये प्रमुख श्रेणियाँ हैं। दूसरे यहाँ पर भगवान वर्णन कर रहे हैं, वैसे आप लोगों को पता है कि 8 वसु कौन कौन हैं, 8 वसुओं का नाम? अच्छा, तो नेक्स्ट टाइम के लिए हम लोग कर सकते हैं 8 वसु और 11 रुद्र है। दूसरा है प्रश्न, 8 वसुओं के नाम हैं द्रोण, प्राण, भव, ध्रुव, अर्क, अग्नि, दोष, वास्तु और विधावसु, ये 8 वसु हैं। और ऐसे ही 11 रुद्र होते हैं। तो ये सारे प्रमुख श्रेणियाँ हैं देवताओं की। फिर भगवान वर्णन करते हैं प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य होना। जितने भी प्रकाश हम लोग देखते हैं उसमें सबसे ज़्यादा प्रकाश किसका है? सूर्य का। सूर्य से ज़्यादा और कोई प्रकाश दे सकता है? सारे ब्रह्मांड को प्रकाशमान करते हैं सूर्य, एक ही सूर्य है अकेला। और ये अकेला सूर्य सारे लोकों में प्रकाश फैलाता है। क्योंकि पृथ्वी कितनी बड़ी है, हमें यहाँ से अगर पृथ्वी के दूसरे कोने में जाना है तो कितना समय लगता है, कितना ज़्यादा डिस्टेंस है। सूर्य एक छोटा सा ग्रह है पृथ्वी लोक में, ऐसे पृथ्वी लोकों पर कई ग्रह हैं, फिर ऐसे कई लोक हैं, ये सारे मिलकर एक ब्रह्मांड बनाते हैं, ऐसे कई ब्रह्मांड हैं। तो सारे जो एक ब्रह्मांड बनता है उस पूरे ब्रह्मांड को एक अकेला सूर्य रोशनी देता है, कितना उसका प्रकाश होगा। सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी पर आता है
अगर ये प्रकाश ऐसा जब रिसर्च किया गया था कि जितना प्रकाश सूर्य की एक किरण से निकलता है असल में जितना प्रकाश उतना शक्ति या इस प्रकाश की शक्ति सारे मनुष्य मिलकर और सारा ब्रह्मांड के मनुष्य मिलकर अपने सारे जीवन में उतनी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकते जितना इसकी एक किरण में शक्ति है सूर्य की। इसलिए कि इतनी शक्ति हम तक आती नहीं है, इतना ताप हम तक आता नहीं है, इसलिए हम लोग बचे हुए हैं। वैज्ञानिक बताते हैं कि सूर्य का जो अंतर है पृथ्वी से, अगर वो थोड़ा सा भी कम हो जाए दुर्भाग्यवश तो सारी पृथ्वी जलकर राख हो जाएगी, इतनी तेज उसकी किरणें हैं। लेकिन भगवान का ये अरेंजमेंट व्यवस्था किसकी है? भगवान की। कभी ऐसा नहीं होता कि पृथ्वी सूर्य के एकदम पास चली जाए या सूर्य थोड़ा भी, वैज्ञानिक कहते हैं एक दो इंच भी अगर पास चली गई तो जल जाएगी, इतनी शक्ति है सूर्य। यही सूर्य था ऐसे शक्तिशाली है, लेकिन भक्त जो होते हैं उनसे भी शक्तिशाली हैं। मैं कभी अभी स्मरण हुआ एक ऐसे भक्त का जिन्होंने सूर्य को कुछ समझा ही नहीं था, एक फल समझा था सूर्य को, लाल रंग का फल हनुमान। हम सूर्य की शक्ति का वर्णन कर रहे हैं, ज्योतियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन हनुमान जी क्या कर रहे थे? उसकी तरफ धक्के थे, झमका रही थी, क्यों? तो खाना चाहते थे। वैसे सूर्य चाहते तो हो सकता था हनुमान जी जल भी जाते, लेकिन क्योंकि सूर्य को पता था वायु पुत्र है, इसलिए उन्होंने अपने जो किरणों थी उनको शीतल कर लिया था। तो ऐसे सूर्य प्रकाशन तेजस्वी सूर्य हैं। अगर हम सूर्य को देखें तो हमें कृष्ण का स्मरण होना चाहिए। यहाँ पर कृष्ण ये सारी बातें क्यों बता रहे हैं? कोई अहंकार नहीं दर्शा रहे हैं, मैं आदित्य में मैं विष्णु हूँ, ज्योति में मैं सूर्य हूँ, मरुत में मैं मरुचि हूँ, अहंकार नहीं है। केवल हम लोगों को ज्ञान देने के लिए कि अगर हम लोग भगवान को अलग अलग रूपों में देखना चाहते हैं, अपने जीवन में सदैव भगवान का स्मरण करना चाहते हैं, तो कैसे कर सकते हैं? इसलिए भगवान बताते हैं कि जब आप सूर्य को देखिए तो जानिए कि वो कृष्ण है। कृष्ण का स्मरण कीजिए। कृष्ण कैसे हैं? जैसे एक राजा होता है उसे भगवान का प्रतिनिधि माना जाता है, तो क्या राजा को भगवान मानना चाहिए? राजा को भगवान के समान आदर देना चाहिए, क्योंकि भगवान का जो प्रतिनिधि है वो भगवान के समान आदर पाने की योग्य है। इसलिए भगवान बताते हैं कि जो अगर राजा को आप देखें तो मेरा स्मरण करें, आप सूर्य को देखिए तो मेरा स्मरण कीजिए। भगवान विधि दे रहे हैं, भगवान की कृपा, इसको समझना बहुत कठिन है। हम लोगों ने इच्छा की कि हे भगवान, हम आपकी शक्ल नहीं देखना चाहते हैं, हम आपसे दूर रहना चाहते हैं, विमुख होना चाहते हैं। भगवान ने कहा कोई बात बता, जैसे तुम्हारी इच्छा। यहाँ पर आए हैं, कष्ट भोग रहे हैं, फिर भगवान कहते हैं क्यों कष्ट भोग रहे हो, मेरा स्मरण करो। हम लोग कहते हैं हमें पता नहीं आपका स्मरण कैसे करना, मैं बताता हूँ। भगवान बता रहे हैं कितनी कृपा है, सब कुछ दे रहे हैं हमें, केवल हमें जो वो दे रहे हैं उन चीज़ों को स्वीकारना है बस, और कुछ नहीं करना है। कोई मेहनत नहीं करनी है, कोई तपस्या नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। जो वो कह रहे हैं उन बातों को केवल स्वीकारना है। अर्थात कोई अपने दोनों हाथों से आपको कुछ दे रहे हैं, आपको केवल हाथ फैलाना है बस। यही हाथ अगर हमने भगवान के आगे फैलाए तो जो भी भगवान दे रहे हैं वो हम ग्रहण कर सकते हैं। ये भगवान की कृपा है, भगवान सब कुछ दे रहे हैं। क्या कैसे स्थिति हो सकती है? इसमें सुख क्या है? ध्यान का वर्णन करते हैं, इतना वर्णन कर रहे हैं, कोई आवश्यकता नहीं है भगवान की।
अगर इतने सारे जीव जो इस ब्रह्मांड में हैं या दूसरे ब्रह्मांड में हैं या सारे ब्रह्मांडों को मिलाकर हैं, वो सारे जीव अगर आध्यात्मिक जगत में ना हुए तो भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि भगवान का काम रुक गया है वहां पर, इसलिए भगवान भागे भागे आए हैं ब्रह्मांड में, अरे भाई चलो वापस, वो मशीन नहीं चल रही है, बैटरी डाउन हो गई है, कार स्टार्ट नहीं हो रही है, या ड्राइवर नहीं है मेरा, मैं जाऊं कैसे, है ना। वो आप लोगों ने सुना है ना, एक नवाब थे वाजिद अली शाह, जब अंग्रेज आए थे उनको पकड़ने के लिए, तो सारे उनके सैनिक सेनापति वगैरह सब भाग गए, उनके नौकर चाकर, हर एक महल में, हम गए थे उनके महल में, तो उनके महल में एक चोर दरवाज़ा होता है और दो दीवारों के अंदर से भागने का रास्ता होता है, आज भी है, अगर आप लोग कभी जाएं लखनऊ में उनका महल है तो उसमें देख सकते हैं। लेकिन उसमें ऐसा भ्रम है कि एक बार अगर व्यक्ति समझे, कोई अगर सैनिक उनके पीछे भाग रहे हैं तो वो उस रास्ते में चले जाते थे, तो एक बार अगर व्यक्ति उन दीवारों में घुस जाता है, दीवारों के बीच का जो रास्ता है वो रास्ता भूल जाता है, वो कभी बाहर नहीं आ सकता, उसी में घूमता रहता है, लेकिन जिसको पता है वो बाहर निकल जाता है। देखिए कितने अच्छी कारीगरी किया करते थे भारत में लोग, ऐसा कोई बना सकता है, खाली दीवारों की दीवारें ऐसी बनाई हैं, कुछ नहीं किया है, कोई उसमें यंत्र नहीं लगाया है कि यंत्र लगा है जैसे व्यक्ति अंदर घुसता बटन ऑन करता है गायब हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, दीवारें ऐसी बनाई हैं। आप लोग भी अगर कभी जाएंगे तो आपको एक गाइड की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि एक बार आप अंदर गए तो बाहर नहीं आ सकते फिर, और वो जब गाइड आएगा वो दो मिनट में आपको बाहर निकाल देगा, क्योंकि उसको रास्ता पता है। तो नवाब वाजिद अली शाह वो अपने बेड के ऊपर ही बैठे हुए थे, हिले नहीं, सारी अंग्रेज सेना आ गई अंदर महल में, सारे जो लोग थे भाग गए, सेनापति भाग गए, उनकी सेना भाग गई, उनके नौकर चाकर सब भाग गए, चले गए जहाँ बच सकते थे, बच के निकल गए, लेकिन ये नहीं हिले, अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया तो भी नहीं हिले, बैठे थे। फिर अंग्रेज ऑफिसर आया, तो अंग्रेज ऑफिसर ने बोला कि आई एम वेरी सरप्राइज मिस्टर वाजिद अली शाह, मैं तो बहुत आश्चर्यचकित हूँ, आपके सारे सैनिक भाग गए, सेनापति भाग गए, सब अपने आप को बचा लिया, आप हिले नहीं यहाँ से, और अभी आपको अरेस्ट कर लिया तो भी आप कोई प्रतिरोध नहीं कर रहे, क्या कारण? तो उन्होंने बताया कि देखिए ऐसा नहीं है कि मैं भागना नहीं चाहता था या मैं बचना नहीं चाहता था, मैं आपके हाथों आने का ऐसा नहीं, मैं जाना चाहता था, लेकिन मुझे मेरा नौकर जो मेरी चप्पलें लाता है वो भाग गया, तो चप्पल नहीं थी, मैं नीचे कैसे करता बैठे, ये सत्य घटना है, ये नवाब थे ना, वो तो नवाब है, चप्पल नहीं थी, मैं अपने पाँव कैसे नीचे रखता हूँ, और खुद तो जाकर नहीं उठा सकते क्योंकि नौकर लाते थे, वो नौकर भाग गया बेचारा, तो क्या करेगा, ये हमारे राजी परीक्षा अरे सो गए लेकिन नीचे नहीं होता चप्पल नहीं। तो ऐसे Mm-hmm.
बीती ने कहा कि अपने पति से कहा कि मेरे जो दोनों पुत्र हैं हिरण्य अक्षर हैं निकक्षर, इन दोनों की हत्या हो गई है और दोनों की हत्या का कारण है इंद्र, क्योंकि इंद्र ने विष्णु के साथ मिलकर एक षड्यंत्र रखकर मेरे दोनों पुत्रों की हत्या की। मेरे पुत्र बहुत शक्तिशाली थे, इंद्र को मार नहीं सकते थे, लेकिन वो इंद्र ने षड्यंत्र रखा। तो इसलिए मैं आपसे ये वरदान मांगने जा रहा हूँ, कृपया इसको ध्यान से सुनिए। उन्होंने बताया कि मैं एक ऐसा पुत्र चाहती हूँ जो इंद्र की हत्या कर सके। Mm-hmm.
Thank you. ब्रह्मा जी को जाहिर करते हैं जब भगवान कृष्ण द्वारा ब्रह्मा ये एक सिलेक्शन बहुत बड़ा चाहते हैं, जब बहुत भगवान का सिलेक्शन करते हैं तो ये प्रसन्नता भक्तों को देती है, लेकिन भक्तों की प्रसन्नता और यहाँ वर्ण प्रकृति की प्रसन्नता में दिव्य ज्ञान में प्राप्त होता है। तो एक भौतिक जगत के परे जाकर जो भौतिक जगत के परे एक और आनंद है जिसे भगवान बताते हैं भगवद गीता में, और वहाँ के दिव्य आनंद की प्राप्ति केवल भगवान के दर्शन से करते हैं, इसलिए उनका कंठ अवरुद्ध हो जाता है, आँखों से आँखों पक्षियों की धारा बहती है। लेकिन यहाँ वर्ण प्रकृति में वही सतर्क कर रहे हैं लक्षण, क्योंकि उससे भी ऐसा लग रहा है कि जीवन की पूर्णता सफलता उसे मिल गई है, लेकिन जब वो प्रार्थना करने लगता है ब्रह्मा जी से और बतलाता है कि आप ही कृष्ण हैं, आप ही परम पुरुष हैं, आप ही से इतनी सारी जो बातें कह रहा है, तो ये सहकार पहले विकासकरण नहीं है, इस चीज़ को बहुत स्पष्ट करते हैं। सहकार कहते हैं कि कृष्ण ब्रह्मा जी नहीं है, हमारी कृष्ण भगवान श्री कृष्ण है, क्योंकि इन बातों से हमें भ्रम नहीं कर जाना चाहिए कि क्या ब्रह्मा जी ही सभी में सृष्टि की रचना करते हैं और भगवान नहीं है। तो कविता पहले ही तात्पर्य में बदला रहे हैं कि आदि कृष्ण भगवान ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, जैसे प्रभु ने कहते अपने भजन में लिखते हैं, तुम्हें सर्व स्वरेश्वर गजेंद्र कुमार तुम्हारे भजन सब भजन सब कुमार आपके कृष्ण होता है वो मैंने कहा। अरे वो कार्य बताते हैं कि तुम्हारे इच्छा है ब्रह्मा करो न सृजन, ब्रह्मा सृजन करते हैं लेकिन आपकी इच्छा से आपकी शक्ति से। तो मेरे कविता किसी चीज़ को समझा रहे हैं कि ब्रह्मा केवल एक शिल्पी हैं, एक इंजीनियर हैं, जो चीज़ें भगवान ब्रह्मा भगवान नहीं है, ब्रह्मा की अपनी शक्ति नहीं है। और ये बतलाता है जो भी शक्तियाँ इस जगत में हम देखते हैं, चाहे वो इंद्रियों की शक्ति हो, चाहे वो मन की शक्ति हो, चाहे वो शरीर की शक्ति हो, या भौतिक जगत की संपूर्ण शक्ति हो, संपूर्ण या काल अनेकी सारी शक्तियों को मिलाकर एक शक्ति हो, ये सब भगवान की शक्ति होगी। तुम बताते हैं महाविष्णु से आते हैं, लेकिन महाविष्णु भगवान कृष्ण के महाविष्णु भगवान कृष्ण से आते हैं, इसीलिए सारी जो शक्ति है ये सब भगवान से आते हैं। हम लोगों को अपनी शक्ति पर बड़ा गर्व होता है कि हमारे अंदर बहुत शक्ति है, किसी को शारीरिक बल होता है, किसी को मन का बल होता है, किसी को बुद्धि का बल होता है, लेकिन ये सारे बल जो आचार्य समझाते हैं कि इनको शक्ति की सेवा में लगानी चाहिए। अगर इनके द्वारा इन शक्तियों के द्वारा हम अपना आनंद या भोग करने का प्रयास करते हैं तो ये हमारे लिए बंधन का कारण बनते हैं, लेकिन वही शक्ति अगर हम भगवान की सेवा में लगाते हैं तो वही शक्ति हमें वही कार्य हमें मुक्त करे, बहुत मुक्ति की ओर जाता है और अभैध होने का प्रयास करता है। उनको योजना बना रहा है अमर होने के लिए, लेकिन कार्य कर रहा है ब्रह्मा करने के लिए, क्योंकि ब्रह्मा जी की स्थिति को समझ रहा है, लेकिन पूर्ण रूप से भगवान श्री विष्णु भगवान श्री कृष्ण की सत्ता यहाँ पर कविता तात्पर्य में दो लिखे हैं। भागवतम के दस प्रमुख होते हैं, अत्र सर्ग विसर्ग को ध्यान बैठने में है तीस समय कथन है मंत्र निरोध मुक्ति आश्रय है, ये दस विषय श्रीमद भागवतम से बताए गए हैं। कर्म में तो सबसे पहला है सर्ग और दूसरा विसर्ग, इन दोनों की चर्चा पूरे कविता जो है तात्पर्य कर रहे हैं। बताते हैं कि सर्ग का अर्थ है पहले स्तर की वृत्ति, जैसे यहाँ पर उन्होंने बताया कि आदि सृष्टा भगवान श्री कृष्ण जन्म वृत्ति होता है, तो आदि सृष्टि अर्थात प्राथमिक स्तर की सृष्टि ये महाविष्णु के स्तर होती है। सर्ग का अर्थ है पहले स्तर की सृष्टि और विसर्ग दूसरे स्तर की सृष्टि स्तर पर होती है, और विसर्ग दूसरे स्तर की सृष्टि ये ब्रह्मा जी करते हैं जिसको हम लोग देखते हैं। लेकिन दूसरे स्तर की सृष्टि करने के लिए गौर या सेकेंड क्रिएशन करने के लिए ब्रह्मा जी को कुछ चाहिए, कुछ मटीरियल चाहिए, कुछ एलिमेंट चाहिए, उसके बिना वो अपने आप में प्रकट नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी चीज ब्रह्मा जी प्रकट नहीं करते हैं, जिनको हम लोग रिकंस्ट्रक्शन करवाते हैं, रिकंस्ट्रक्शन करने वाला व्यक्ति आता है तो उनकी सीमेंट या लोहा या रोड प्रकट नहीं करता, वो केवल उनको लेकर मिलाकर आपके लिए घर प्रकट कर देता है, एक बिल्डिंग बना देता है। तो हम लोग चाहते हैं कि बिल्डिंग अच्छा बनाया जाए, लेकिन दरअसल ये चीज़ों को देने वाला तैयार है। इसी तरह एक व्यक्ति की रचना भी बनना भी एक इंजीनियर की तरह करते हैं, उनको भगवान जो सेवा देते हैं वो आते हैं, जो चीज़ें भगवान ने प्रदान की हैं उनको मिलाते हैं और एक नई व्यक्ति एक ज़्यादा भवन बनाते हैं। ब्रह्मा जी का कार्य बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, ऐसा नहीं है कि ब्रह्मा जी का कार्य कोई छोटा मोटा कार्य है, भगवान सारी सृष्टि करके दे देते हैं। ब्रह्मा जी का कार्य भी बहुत महत्वपूर्ण है, सारे सारे जीवों को बनाना पड़ता है, अलग अलग जीवों को प्रकट करना पड़ता है, तो उन जीवों के जब स्थिर करना पड़ा उनको देवताओं में जाकर बताया, बहुत महत्वपूर्ण है। सारे ब्रह्मांड के इंचार्ज हैं, सारे ब्रह्मांड की देख रेख उन्हें करनी पड़ती है, तो बहुत महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, लेकिन फिर भी ये द्वितीय स्तर को भगवान देखते हैं। तो जब भगवान कृष्ण एक भौतिक जगत की रचना करना चाहते हैं जीवात्माओं को आनंद देने के लिए, जीवात्माओं को भोग के लिए, क्योंकि जीवात्मा ये इच्छा करता है भगवान से विभोग करना चाहता है, भगवान से विमुक्त होना चाहता है, भोक्ता बनना चाहता है। तो इस समय भगवान जब एक शक्ति की रचना करते हैं तो अपना विस्तार करते हैं, और उनके कई विस्तार होते होते महाविष्णु तक पहुँचते हैं, और फिर महाविष्णु अपना विस्तार करते हैं, क्योंकि महाविष्णु सागर में निवास करते हैं, इसलिए उनके सागर में दक्षा विष्णु भी करते हैं, गर्भ दक्षा विष्णु के रूप में और गर्भ दक्षा यज्ञ सागर विष्णु के रूप में। तो इस तरह से जो महाविष्णु के स्तर पर जब कुछ स्थिति रखनी शुरू होती है तो प्रमुख 16 तत्व उसमें होते हैं। पहले हैं पंच महाभूत, हमें जानते हैं पंच महाभूत हैं, पृथ्वी जल आकाश वायु अग्नि। तो पहले पांच महाभूत आते हैं, ये जो रचना है ये महाविष्णु के स्तर पर है। तो पंच महाभूत के तन्मात्राओं का अर्थ है विषय, इंद्रियों के विषय, आँखें हैं जो देखना चाहती हैं, रूप देखना चाहती हैं, नासिका को सुनना चाहती है, तो ये जो विषय हैं उन्हें तन्मात्राएँ कहते हैं। तो पाँच महाभूत, पाँच तन्मात्राएँ और पाँच कर्मेंद्रियाँ भगवान की दृष्टि के द्वारा असंख्य जीव एक ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी उन्हें प्रकट करते हैं, किस तरह से ब्रह्मा जी पहले चार किनारा बनाते हैं, बहुत सारे जीवन चित्र उनके दस चित्र आते हैं, फिर आगे प्रजापति बनते हैं, प्रजाति प्रजनन करते हैं, अलग अलग चीज़ों को बनाते हैं, केवल मनुष्य नहीं अलग अलग रूप आते हैं, उन्हें प्रकट करते हैं। शिव जी को गलती से ब्रह्मा जी ने बताया कि आप सृष्टि करो, क्योंकि देवी पुत्र हो रहा था ब्रह्मा जी दादा को सृष्टि करो, चार कुमार हो चारों को सृष्टि नहीं करनी है, हमें पता है कि आगे बड़े होने से क्या होता है, चिंता बढ़ जाती है, उंगलियाँ प्रबल हो जाती हैं, हम बच्चे ही रहेंगे, वो बच्चे ही रहे और छोटे बालक के रूप में तपस्या करने लगे, तो ब्रह्मा जी प्रेरित हुए उनसे और उनके क्रोध से उनके ब्रह्म बीच में से रुद्र प्रकट हुए, और रुद्र इसलिए क्योंकि जैसे ही प्रकट हुए वो रो रहे थे और रोते रोते इसलिए उनका नाम रुद्र पड़ा। तो बाद में उन्होंने बड़ी नम्रता से ब्रह्मा जी से पूछा कि मैं क्या कह रहे थे, तो ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हो गए, क्योंकि उन्होंने कहा पहले जो चार पुत्र थे उनको तो कहा तो भी नहीं किया उन्होंने, उनको कहा तो सृष्टि की रचना करो, लेकिन ये क्या करें। तो ब्रह्मा जी ने कहा तुम सृष्टि की सृष्टि कर प्रजन, और ये कहकर ब्रह्मा जी अपने ध्यान में मन हो गए और इधर शिव जी ने सृष्टि करने आरम्भ की। अब सृष्टि कैसे कर रहे थे, भूत प्रेतों को संख्या को सारे देश के लोगों को प्रकट कर रहे थे। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि कितना बाद जब उनकी ध्यान टीका को देखा कि सारे ब्रह्मांड में तो ऐसे ही लोग भर रहे हैं शिव जी के, तो शिव जी काम कुछ दिन के अधिक चाहता है। तो ब्रह्मा जी ने तुरंत उनको कहा कि अब आप रुक जाए, सृष्टि मत करो, बहुत कर दिया आपने, सारा ब्रह्मांड अगर इससे भर गया तो फिर बाकी लोगों का काम क्या होगा, इसलिए उनको रोक दिया और उनको कहा कि अब आप तपस्या, तो तब से शिव जी हमेशा तपस्या करते हैं, पहले नहीं करते, पहले वो भी सृष्टि किया करते। उसके बाद फिर जब ब्रह्मा जी ने देखा कि अब अलग अलग चीज़ें प्रकट करने हैं, उनका सब पुत्र हुए, उनकी योनियाँ प्रकट हुई, भगवान ने समझाता है कि ये सारी योनियाँ पहले से सृष्टि के आरंभ कर गए, आदमी बना मैंने बच्चे तैयार करके बना, फिर बड़े होते होते या आदमी बढ़ने बना तो कहीं नहीं लिखा, भगवान बतलाता है कि पहले से था, अभी भी ब्रह्मा जी हैं वही मनुष्य रूप जानता है, तो पहले आ गए हैं, तो ऐसे कैसे कोई कह सकता है कि मनुष्य बंदरों के बाहर नहीं आए। एक तरह से सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी करते हैं, इंद्रियां होती हैं, लेकिन हमारी सारी जो इंद्रियां हैं वो भौतिक तेज रहते हैं, हमारे कहते हैं युद्ध ऐसा है इसलिए ऐसा बोलना पड़ रहा है, सबके चेहरे देखकर हमें लग रहा है कि हमें मारे खंडन कर देना चाहिए, जिसका वैसे देख रहे दिखाई नहीं आ रहा, लगता है कहाँ जा रहा है, कौन से कभी कभी सुन लेना चाहिए, हर समय हम कथाएँ सुनें या हर समय आपके अच्छी कहानियाँ सुनें तो ठीक है इस आने के समय में, लेकिन हमारा रोड कट जाएगा जो थोड़ी सी दवाई भी लें, तो दवाई थोड़ी कड़वी होती है, इसलिए जरा ध्यान से आप लोग सुनें, क्योंकि अगर ज़्यादा लोग सुनेंगे तो बोलने वाला भी सो जाएगा तो तकलीफ हो जाएगी। तो जब इंद्रियाँ हैं हर इंद्री के एक एक अधिकता का भेद हैं, जो देवता हैं ये इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं, उदाहरण के लिए हमारी आँखें, हमारी आँखें ये कैसे देखती हैं, जो प्रकाश होता है, प्रकाश नहीं होता हम बता में आँखें नहीं देख पाती, और ये प्रकाश आता है सूर्य से, सूर्य के जो किरण हम देख रहे हैं उनकी भी प्रकाश देती है, और इस सूर्य के गोले के पीछे एक देवता है सूर्य नारायण भगवान, तो ये सूर्य ये हमारी आँखों को नियंत्रित करते हैं, ये हमारे आँखों की अधिकता का देव है, क्योंकि इनके कारण आँखें कार्य कर पाते हैं, तो ऐसे हर एक इंद्रिय के अलग अलग देवता हैं जो इसको कंट्रोल इसको नियंत्रण करते हैं, और ये सारे देवताओं को ब्रह्मा जी नियंत्रण करते हैं, ब्रह्मा जी उनको कभी तकलीफ होती है तो ब्रह्मा जी के पास पहुँचते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी को भी भगवान कंट्रोल करते हैं, ये सारी प्रकृति मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, भगवान बताते हैं देखी जाए, इसलिए परम नियंत्रण भगवान श्री कृष्ण जी, इस चीज़ को हम लोगों को समझना चाहिए, भगवत गीता में भगवान बताते हैं ब्रह्मा जी का कार्य, यदि जीव है या क्या ब्रह्मा जी का दिन समाप्त होता है
ब्रह्मा जी के मिलकर एक महीना होता है सुंदरता का वर्णन जब करते हैं तो आंखों के लिए Thank you.
जगत को